नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्रिका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
तू क्यों प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि व्यवस्था और मसीह में विश्वास की तुलना करते हुए पौलुस हाजिरा और सारा की उपमा देकर उन दोनों में अंतर समझाता है। आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हाजिरा और सारा की उपमा, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम दूर दराज में रहकर भी आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे समझ सकें, सीख सकें, अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं और इसके द्वारा से हम आपके उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तनाव में है, बीमारी अवस्था में है या किसी प्रकार के दबाव में है। आप उन सब की भी सहायता करें, उनके जीवन में भी अपनी शांति प्रदान करें। आज अपने जीवित वचन के द्वारा सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम देखेंगे हाजिरा और सारा की उपमा। यह अध्याय हाजिरा और सारा में अंतर दर्शाते हुए मसीह में विश्वास को मान्य ठहराता है। हाजिरा के बारे में कही गई प्रत्येक बात व्यवस्था का प्रतीक है और सारा के विषय में कही गई प्रत्येक बात मसीह में विश्वास का प्रतीक है। तो आइए आप मेरे साथ गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 19 पद को निकाल लीजिए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। पौलुस गलातिया के विश्वासियों को बालकों कहता है। यहाँ पर बालक शब्द का मूल अर्थ है शिशु। पौलुस का हृदय अति कोमल था। वह स्वयं को एक माँ के स्थान पर रखता है और बालकों को अपने बच्चों की तरह कहता है। गलातियों के पत्री 4 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। पौलुस व्यक्तिगत रूप से उनके मध्य उपस्थित रहना चाहता था कि भिन्न भाषा शैली का उपयोग करे। वह उनके लिए बहुत चिंतित था। उसकी भाषा कठोर है, परंतु उसका हृदय कोमल है, जो इससे प्रकट होता है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय के 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? कुछ लोग 10 आज्ञाओं या विधि विधान का पक्ष लेते हैं, परंतु वे व्यवस्था द्वारा दिए गए दंड की चर्चा नहीं करते। वे व्यवस्था को उसके दोष देने की प्रवृत्ति में प्रस्तुत नहीं करते हैं। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 26 से 21 पद में, जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था देने के लिए सीनै पर्वत पर बुलाया था, तब क्या हुआ? जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी में निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्ठे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंह का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया और यह हुआ सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़कर यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत से लोग नष्ट हो जाएं। मेरे प्रियो परमेश्वर ने लोगों को चिताया कि वे बहुत दूर रहें जब वह मूसा को व्यवस्था दे रहा था जिसे हम निर्गमन 20 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हमने पढ़ा कि लोगों ने बादलों का गरजना बिजलियों का चमकना और नरसिंगे का बड़ी आवाज सुनी और पर्वत पर से बहुत धुआं उठ रहा था। यह दृश्य देख वे बहुत दूर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने मूसा से कहा कि वे उसकी बात सुनेंगे क्योंकि परमेश्वर की वाणी सुनकर वे नष्ट हो जाएंगे। हम परमेश्वर की महापवित्रता को अंतर्ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप और मैं तो परमेश्वर के जगत में बहुत पिछड़े हुए हैं। हम तो परमेश्वर के जगत में भटके हुए पापी हैं। हम में उसके अनुसरण और आज्ञा पालन की क्षमता ही नहीं है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सांसारिक मन परमेश्वर का बैरी है। मेरे मित्रों संसार परमेश्वर का विरोधी है। वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। संसार सुधारने की जगह अधिकाधिक पाप में गिरता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बुराई बढ़ रही है। संसार तो उसी दिन से बुरा है जिस दिन से परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था। रोमियो की पत्री उसके अध्याय 8 में आगे लिखा है पद 7 में शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जी हाँ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसराइली कांप कर सीनै पर्वत से दूर भागे और कहने लगे हम नाश हुए। मेरे मित्रों परमेश्वर महान पवित्र और सर्वोच्च है और महिमा में वास करता है। आप और मैं इस संसार में मिट्टी से खेल रहे हैं क्योंकि हम मिट्टी ही हैं। हम इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने का साहस करते हैं। सांसारिक मन परमेश्वर का विरोधी है। यह इस संसार में मनुष्य का स्थान है। पौलुस कहता है कि व्यवस्था की बातों को सुनो तुमने तो अभी कुछ भी नहीं सुना है। यह सच है। गलातिया के विश्वासियों ने तो व्यवस्था को सुना ही नहीं था। व्यवस्था का दिया जाना कोई आकर्षक और सुखद घटना नहीं थी। वह एक भयानक दृश्य था। गलातियों के विश्वासी व्यवस्था के अधीन होना चाहते थे अतः पौलुस उन्हें सुनाता है। आइए हम पढ़ें। गलातियों के पत्री 4 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है यह लिखा है कि इब्राहिम के दो पुत्र हुए एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। अब्राहम के जीवन से उदाहरण देते हुए पौलुस उसके दोनों पुत्रों में अंतर को दर्शाता है जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय 17, 18, 20 और 21 अध्याय में पढ़ते हैं। एक हाजिरा का पुत्र और दूसरा सारा का पुत्र था। एक दासी का पुत्र था तो दूसरा स्वतंत्र स्त्री का अर्थात उसकी पत्नी का। स्वतंत्र स्त्री अनुग्रह का प्रतीक है और दासी व्यवस्था का प्रतीक है। वह इन दोनों में अंतर को स्पष्ट करेगा। कुछ लोगों ने पौलुस की इस बात पर अब्राहम के जीवन की घटना को एक उपमा बना दिया परंतु पौलुस के कहने का अर्थ था कि उसमें हमारे लिए एक संदेश है। गलातियों के पत्र 4 अध्याय के 23 पद में हम आगे पढ़ते हैं परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। हम्मुरावी लेख जो अब्राहम के युग में सर्वमान्य था, उसके अनुसार दासी का पुत्र भी दास ही होगा। अतः इश्माइल अब्राहम का पुत्र होकर भी एक दास ही था। जो स्वतंत्र स्थिति से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इसहाक का जन्म एक चमत्कार ही था, क्योंकि अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया था और सारा भी। संतानोत्पत्ति की आयु पार हो चुकी थी और मानविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके साथ शारीरिक संबंध के द्वारा कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती थी। इस प्रकार से कहें कि सारा की कोख एक प्रकार की कब्र थी और परमेश्वर ने मृत्यु से जीवन उत्पन्न किया। गलातियों के पत्र 4:24 में लिखा है, इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीना पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है। इन बातों में दृष्टांत अर्थात अब्राहम के जीवन की ये घटनाएं हमारे लिए शिक्षाप्रद हैं। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। पहली मूसा की व्यवस्था की वाचा का प्रतीक है जो उसने सीनै पर्वत पर परमेश्वर से प्राप्त की थी, वह हाजिरा है। पौलुस हाजिरा को सीनै पर्वत कहता है जो मूसा की व्यवस्था का एक पर्यायवाची शब्द है। तब हम आगे पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 4:25 में, और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पौलुस के इस उदाहरण में हाजिरा को सीनै पर्वत कहता है जो यरूशलेम के सदृश है। पृथ्वी का पौलुस के समय का यरूशलेम जो अपनी प्रजा के साथ तब भी दासत्व में था, अर्थात इसराइल मूसा की व्यवस्था का दास था। हम आगे पढ़ेंगे गलातियों के पत्र 4:26 में लिखा हुआ है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। ध्यान दीजिए, लिखा है ऊपर की यरूशलेम। यह प्रकाशित वाक्य 20 का यरूशलेम है जो परमेश्वर के पास स्वर्ग से उतरेगा। पुराना यरूशलेम व्यवस्था के अधीनस्थों की मातृभूमि था और नया यरूशलेम अनुग्रह के अधीनस्थ विश्वासियों का भावी नगर है। विश्वासी का न तो इस समय और न ही भविष्य में विधि विधान से कोई संबंध है। गलातियों के पत्र 4:27 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक हैं। सारा जो इसहाक के जन्म तक बांझ थी उसके वंशज हाजिरा के वंशजों से कहीं अधिक थे। आज भी अरबों की जनसंख्या इसराइल से कम है। इस उदाहरण द्वारा पौलुस के कहने का अभिप्राय है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के अधीन मनुष्य जाति में मूसा की व्यवस्था के बलिदानों द्वारा उद्धार पाने वालों से कहीं अधिक विश्वासियों का उद्धार कर रहा है। गलातियों की पत्री 4:28 में आगे लिखा है, हे भाइयों हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं। ध्यान दीजिए, विश्वासी भी प्रतिज्ञा की संतान है। हमारा नया जन्म हो गया है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करने से हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर कहता है कि हम उसमें विश्वास करके नया जन्म पाते हैं। पहला पत्रस की पत्री 1:23 में लिखा है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। गलातियों के पत्र 4:29 में आगे लिखा है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। मेरे मित्रों, रूढ़िवादी परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार से घृणा करता है। जब मैं अपनी सेवा में आगे बढ़ रहा था, तब मैंने भविष्यवाणी के विषय पर प्रचार किया और यह स्पष्ट है कि भविष्यवाणियों पर प्रचार करने से मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। आराधना के बाद एक वृद्ध मनुष्य ने आकर मुझसे कहा, भाई आपको भ्रम है, भविष्यवाणी पर प्रचार करके आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे, वरन सच तो यह है कि आपके श्रोतागण बढ़ जाएंगे। मनुष्यों को भविष्यवाणियों में बहुत रुचि है। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह पर प्रचार करेंगे तो निश्चय ही समस्या में पड़ जाएंगे। यही कारण है कि आज सुसमाचार में अत्यधिक कटौती कर दी गई है। मैं बहुत ही कम सुसमाचार सुन पाता हूँ, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार। मैं जानता हूँ क्यों। यदि आप सुसमाचार प्रचार करेंगे तो आपके सामने आलोचनाओं का पहाड़ खड़ा कर दिया जाएगा। लोग तो मुझे बाध्य करते हैं कि किसी और बात की खोज करूं जो पवित्र आत्मा मुझे दिखाए। उदाहरण स्वरूप किसी अनुष्ठान को निभाओ कि मेरे मन फिराव के समय मुझे जो नहीं मिला वह प्राप्त करूं। मेरे मित्रों, यह कहना भी मसीह यीशु को शापित ठहराना है। यदि आप उसके कार्य में कुछ भी जोड़ते हैं तो इसका अर्थ है कि आप यीशु की क्रूस की मृत्यु को निकम्मा कहते हैं। मसीह हमारे लिए शापित हुआ था और यदि आप उसके बलिदान को स्वीकार नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आप अपने आप को निर्दोष कह रहे हैं, अर्थात दोषी प्रभु यीशु है। पौलुस के ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। सांसारिक मनुष्य अनुग्रह के सुसमाचार से घृणा करता है। मेरे मित्रों, हमारे स्वभाव में ही है कि हम सुसमाचार से घृणा करें, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यह तो मसीह यीशु का महिमान्वन करता है और हमारी आंखों को उसकी ओर आकर्षित करता है। गलातियों के पत्र 4 अध्याय उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। देखिए, उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 10 पद में यही लिखा है कि परमेश्वर ने दासी हाजिरा और उसके पुत्र को दूर भेज देने की आज्ञा दी। आज परमेश्वर आपको और मुझे आज्ञा देता है कि अपने विधि पालन से मुक्ति पाएं, संपूर्ण ध्यान मसीह यीशु पर लगाएं ताकि आप उसके स्वतंत्र पुत्र बन पाएं। गलातियों के पत्र 4 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। अब्राहम को हाजिरा और सारा के पुत्रों में चुनाव करना था। पौलुस कहता है कि हमें भी चुनाव करना है, व्यवस्था या अनुग्रह। यदि आप मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं और व्यवस्था को भी जोड़ते हैं तो वह आपका उद्धार नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने मसीह यीशु में विश्वास किया है या आप अपने लिए कुछ और भी कर रहे हैं? यीशु के मृत्यु के अतिरिक्त यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसे भूल जाओ और केवल यीशु को निहारो, उसकी ओर देखो, उसी से सब कुछ ग्रहण करो। वह हमारा उद्धार करता है, वह हमारा प्रभु है, उसी का संपूर्ण महिमान्वन होना अवश्य है। जी हाँ, आज मुझे और आपको चुन लेना है कि आप स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं या दासी स्त्री के। मेरे मित्रों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब्राहम की पत्नी सारा थी और उसके एक दासी थी जिसका नाम हाजिरा था। जब उससे संतान उत्पन्न नहीं हो रहे थे तब उसने अपनी दासी के साथ संबंध रखा और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी को हम यहाँ पर दासी का पुत्र कह रहे हैं जिसका नाम इस्माइल है। और दूसरा पुत्र जो उसकी पत्नी से उत्पन्न हुआ, सारा से उत्पन्न हुआ, उसका नाम इसहाक है जिसे हम स्वतंत्र स्त्री का पुत्र कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक स्त्री दासी है, दूसरी स्त्री स्वतंत्र है। स्वतंत्र स्त्री जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करता है, वे संतान बनते हैं। और दासी स्त्री वे हैं जो व्यवस्था की आज भी गुलामी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको चयन करना है, चुनाव करना है कि आप किसकी ओर हैं। क्या आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं या नहीं? यदि नहीं, तो आज आप निर्णय लीजिए और सही विचारों के साथ अपने जीवन के लिए सत्य का चुनाव कीजिए और निश्चय जानिए कि उद्धार आपको अवश्य मिलेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही सारा और हाजिरा की उपमा के द्वारा से व्यवस्था और विश्वास की बातों को सीख लिया है और इस बात को जान लिया है कि आपको क्या करना है। आप सही निर्णय लें। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास। न रोको उन्हें, न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास। न रोको उन्हें, न टोको उन्हें, उनको आने